नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। इस चरण के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में आज शाम वार्षिक दीपोत्सव मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे देश भर में 12,000 से ज्यादा विशेष गाड़ियां चला रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित की। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इस चरण के लिए नामांकन भरने की कल आखिरी तारीख है। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इस बीच पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। इस चरण में 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार में लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीपावली के बाद प्रचार तेज होने की उम्मीद है। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी और नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ ने आपस में विलय करने और नागा पीपल्स फ्रंट के झंडे के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी गठित करने का फैसला किया है। इस विलय के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को नागा पीपल्स फ्रंट विधान मंडल दल का नेता चुना गया। 60 सदस्य की नागालैंड विधानसभा में एनपीएफ विधायकों की संख्या अब 34 हो गई है। दोनों दलों के विलय का फैसला कल कोहिमा में एनडीपीपी की छठी आम बैठक में लिया गया। इसमें पार्टी के सदस्य और राज्य के प्रतिनिधि ने भाग लिया। राज्य के मंत्री केजी केनिए ने विलय प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इस कदम से नागा लोगों की क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपावली के पूर्व संध्या पर आज शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार राम की पेड़ी सहित अयोध्या के 56 घंटों पर 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराना चाहेगी। इस वर्ष सरयू तट पर 2100 वेदाचार्य महाआरती में शामिल होंगे और श्लोक का उच्चारण करेंगे, जो एक अन्य विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने देश भर में सैकड़ों विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। अधिकांश यात्रियों की गंतव्य उत्तर प्रदेश और बिहार है, जबकि चेन्नई से 18 लाख लोग त्योहार मनाने के लिए अपने अपने गृह प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम 20,000 से अधिक बसें चला रहा है। इसके बावजूद प्रमुख बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। इस बीच घरेलू विमान किरायों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुंबई से दिल्ली, लखनऊ और अमृतसर के लिए उड़ान सबसे महंगी है। यात्रियों के विमान किरायों में वृद्धि को अनुचित बताया और इसे तत्संगत करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए दिवाली से कुछ ही दिन पहले मिलान से दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी है। फंसे हुए सैकड़ों यात्री अब दिवाली के दिन ही दिल्ली आ सकेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित होल्डिंग एरिया यात्रियों के अनुभव में उल्लेखनीय सुधार कर रहा है। श्री वैष्णव कल रात स्टेशन पर त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन का निरीक्षण कर रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा कि होल्डिंग एरिया यात्री सुविधा केंद्र का हिस्सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दवा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर ली है। नई दिल्ली में कल 3 दिवसीय चिकित्सा कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण को समाप्त करने के लिए प्रभावी है। उन्होंने बताया कि यह दवा विशेष रूप से कैंसर रोगियों और अनियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक है। डॉ जितेंद्र सिंह ने एक अन्य प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि हीमोफीलिया के उपचार में जीन थेरेपी के सफल स्वदेशी नैदानिक परीक्षण की भी जानकारी दी। डॉ जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि देश को अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान विकास को गति देने के लिए आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना होगा। उन्होंने बताया कि एयर आधारित हाइब्रिड मोबाइल क्लिनिक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद के बीच सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दरों में कमी, प्रक्रिया को सरल बनाने, स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 2 करना और वर्गीकरण संबंधी मुद्दों का समाधान समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से लागू जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी लोगों को लाभान्वित कर रहा है। इस बीच वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार से पूरे देश के उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में विभिन्न राज्य के में रहने वाले लोगों ने जीएसटी पर दी गई छूट पर अपने विचार साझा किए। गुवाहाटी में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल फाइनल में आज शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला थाईलैंड के अन्यापत फ्रीचाक से होगा। सेमीफाइनल में कल तानवी ने चीन के लियू सी या को 15-11, 15-9 से पराजित किया। 16 वर्षीय तन्वी भारत की 5वीं बैडमिंटन खिलाड़ी है जो विश्व जूनियर के फाइनल में पहुंची है। उनसे पहले महिला वर्ग में साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट तथा पुरुष वर्ग में सिरिल वर्मा और शंकर मुथुस्वामी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीत लिया है। उन्होंने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए दूसरे सीजन के दौरान 29 गोल किए और 19 गोल करने में मदद की। यह इस उपलब्धि के साथ ही मेसी इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी से पहले अर्जेंटीना के टेटी कैस्टेलानोस ने गोल्डन बूट 2021 में जीता था। मौसम विभाग ने केरल माहे और लक्षद्वीप में अगले 2 दिन में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा की संभावना है। केरल और कर्नाटक के तट और आसपास के समुद्री क्षेत्र जिनमें लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र शामिल है में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चलने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह दिवस 1959 में 21 अक्टूबर को लद्दाख में हथियारबंद चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए 10 बहादुर पुलिस कर्मियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान संयुक्त परेड करेंगे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में जीरो ऑनर रन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ के विजेताओं को पदक और चेक प्रदान किए। राज्यपाल ने पहली जीरो ऑनर रन के सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एकता, धीरज और देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। 1962 के भारत चीन युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने राइफलमैन नीलम तेवी की वीरता को याद किया। उन्होंने युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।